काबा पर हमला।
Up to 500 militants attacked the Grand Mosque.
एक झूठा मेहदी, एक ऐसा हुआ क्या जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया?
Shaking the Saudi regime to its core.
लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने काबा पर हमला किया हो। इससे पहले भी काबा पर कई हमले हो चुके हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि काबा पर सबसे ज्यादा हमले मुसलमानों ने खुद किए हैं। काबा पर पहला हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के बहुत बड़े बादशाह अब्रहा ने किया
था,
जो अपनी 60,000 की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था। और अब्रहा के पास इस फौज में बड़े बड़े हाथी भी थे, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिरेकल से अल्लाह ने अब्रहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया। और काबा को बचा लिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अब्रहा तो इस पूरे हमले में काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन काबा पर दूसरे हमले में पहली बार काबा को आग लगा दी गई। और जिस बंदे ने काबा पर यह हमला किया उसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उसका नाम था यजीद। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने कर्बला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन कर्बला के वाकये के बाद भी यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग, जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थे, उन्होंने कर्बला के वाकये के कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला और वहां से जबरदस्ती सारे बनू उमैया के लोगों को बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही बनू उमैया के कैपिटल डमास्कस में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना किया।
मदीना पर हमला करो,
और उन्हें हुक्म दिया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर मदीना के लोग मुझे अपना बादशाह ना माने तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम मदीना के अंदर घुसकर वहां जिसे चाहे मार दो और मदीना के घरों को लूट लो। जैसे यजीद की फौज मदीना के पास पहुंची, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मदीना वालों ने एक बार फिर मदीना के सामने वही खंदक दोबारा बनाई थी जो इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में बनाई थी। लेकिन वो खंदक काफिरों से बचने के लिए थी और ये मुसलमानों से। लेकिन इस बार यजीद की फौज से मदीना की खंदक मुसलमानों को नहीं बचा सकी, जिसके बाद यजीद की फौज ने मदीना में घुसकर 3 दिन तक सहाबा और उनके बेटों का कत्लेआम किया। और यजीद के हुक्म से मदीना में सहाबा के घरों को लूट ली। और कुछ किताबों में तो यहां तक लिखा है कि यजीद की फौज ने मदीना में कुछ औरतों का रेप भी किया। यजीद के इस जुल्म से मदीना से कुछ लोग अपनी जान बचाकर मक्का की तरफ भाग गए, जहां उस वक्त एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को तबाह करने के बाद भी यजीद को कोई शर्म नहीं है, और उसने दोबारा अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब मदीना से मक्का की तरफ जाओ और वहां उस बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पकड़कर मार दो। लेकिन मक्का पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़िलानहु अपने साथियों के साथ मक्का को डिफेंड करने के लिए बहादुरी से खड़े थे। यजीद की फौज 40 दिन तक मक्का पर हमला करती रही, लेकिन आखिर उन्हें समझ आ गई कि हम तलवारों के साथ तो इनसे कभी नहीं जीत सकते, तो उन्होंने तलवारों को छोड़कर अपने तोपों को आगे किया और पहली बार मक्का पर गोले बरसाने लगे। और तारीख में पहली बार मक्का जैसी होली सिटी पर बमबारी होना शुरू। यहां तक कि कुछ बड़े बड़े पत्थर सीधा काबा को भी लगे। लेकिन इस सारी बमबारी के बाद भी यजीद की फौज मक्का पर कब्जा नहीं कर सकी। आखिर एक रात जब मक्का वाले अपने कैंप्स में सो रहे थे, यजीद की फौज से एक बंदा रात के अंधेरे में आगे बढ़ा और अपनी तीर को आग लगाकर उसे मुसलमानों के कैंप पर फायर कर दी। ये तीर सीधा जाकर मुसलमानों के कैंप पर लगा और वहां एक बहुत बड़ी आग लग गई। लेकिन अब मसला यह था कि जिस कैंप में आग लगी थी वो काबा के बिल्कुल करीब था और मक्का के डेजर्ट रात की तेज हवाओं की वजह से ये आग आहिस्ता आहिस्ता काबा के खिलाफ के तरफ जाने लगी और इस तरह तारीख में पहली बार पूरा काबा जलने लगा। काफी टाइम तक काबा इसी तरह जलता रहा और सारे मुसलमान ये मंजर देखकर हैरान खड़े थे। ये सब कुछ ऑफ कोर्स यजीद की वजह से हुआ था, लेकिन ये यजीद की जिंदगी की आखिरी बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही काबा पर आग लगी उसके कुछ ही दिनों बाद यजीद बिन मुआविया मर गया और उसकी फौज मक्का पर कब्जा किए बगैर ही वापस चली गई। अब यजीद की फौज तो चली गई, लेकिन काबा की दीवारें बिल्कुल जल चुकी थी और काबा बहुत ही कमजोर हो चुका था। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने काबा की बिल्डिंग को फौरन ठीक नहीं की, ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान खुद मक्का आकर यजीद की इस बेशर्मी को अपनी आंखों से देखें कि उसने काबा के साथ क्या किया। अब जब हज के लिए मुसलमान मक्का में जमा हुए, उनके दिलों में बनू उमैया खानदान के लिए गुस्सा बढ़ने लगा। अब्दुल्ला बिन जुबैर काबा के सामने खड़े हुए और मुसलमानों से पूछा कि हमें काबा के साथ क्या करना चाहिए, जिस पर कुछ लोगों ने कहा
काबा को इसी तरह छोड़ देना चाहिए।
लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा, नहीं, कितनी अजीब बात है कि जब हम में से किसी के घर को आग लगे तो हम उसे जरूर ठीक करेंगे, लेकिन अब जब अल्लाह के घर को आग लगाई गई है तो हम उसे ऐसे ही छोड़ दें। जिसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खुद काबा को दोबारा बनाना शुरू किया और काबा को ऐसा नहीं बनाया जैसा आज है, बल्कि काबा के साइज को बढ़ाकर काबा को उस तरह बनाया जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। यजीद ने अपनी 3 साल की हुकूमत में 3 बड़े काम किए। करबला, मदीना पर हमला और काबा को आग लगाना। और यजीद की इन्हीं हरकतों की वजह से अब मुसलमान बनू उमैया से नफरत करने लगे थे। यजीद के मरने के बाद उसका बेटा मुआविया नया खलीफा बना, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद बीमारी की वजह से वो भी फौत हो गए। लेकिन यजीद का ये बेटा इतना जबरदस्त लड़का था कि उसने अपने मरने से पहले ऐलान कर दिया था कि मैं अपने बाद किसी को खलीफा नहीं बनाऊंगा, मुसलमान खुद ही अपना नया खलीफा चूज कर, जैसे पहले खिलाफत में हुआ करता था। तो अब उसके मरते ही दुनिया में एक ऐसी सिचुएशन बनी कि दुनिया में मुसलमानों का कोई भी खलीफा नहीं था। ये देखकर मुसलमान बनू उमैया को छोड़कर मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत करने लगे और उन्हें मुसलमानों का नया खलीफा चुना। और अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे इलाके पर फैल गए। अब ज्यादातर मुसलमान अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपना खलीफा समझते थे, सिवाय कुछ खानदानों के, जिनमें ऑफकोर्स टॉप पर एक ही खानदान था, बनू उमैया। जैसे ही खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर की ताकत अपनी पीक पर पहुंची, एग्जैक्ट उसी टाइम बनू उमैया खानदान ने अपना नया बादशाह सेलेक्ट किया, अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने बादशाह बनते एक बहुत ही अजीब काम किया। उसने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन रोमन एम्पायर के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिनसे मुसलमान कई सालों से लड़ रहे थे। लेकिन अब अब्दुल मलिक रोमन एम्पायर के बादशाह को हर हफ्ते 1,000 गोल्ड कॉइन्स देकर उससे भीख मांगने लगा कि प्लीज हम पर हमला मत करो, क्योंकि मेरी लड़ाई तुम्हारी रोमन एम्पायर के साथ नहीं है, बल्कि मक्का के एक बहुत बड़े सहाबी खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर से। ये देखकर रोमन एम्पायर ने भी अब्दुल मलिक के साथ डील इसलिए की क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु मुसलमानों के खलीफा बने तो फिर रोमन एम्पायर
बाय बाय।
तो अब रोमन एम्पायर के बादशाह के साथ डील करके अब्दुल मलिक ने अपना रुख मुसलमानों की तरफ किया और सबसे पहला हमला अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में इराक पर किया और वहां के लोगों को रिश्वतें दे देकर उन्हें खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ करने लगा। और आखिर एक बहुत बड़ी जंग के बाद अब्दुल मलिक ने यह सारा इलाका छीन लिया और अब अब्दुल मलिक को समझ आ गई कि बिल्कुल यजीद की तरह मक्का पर हमला करने का वक्त आ चुका है। अब्दुल मलिक ने अपने सारे जनरल्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलवाई जिसमें अब्दुल मलिक ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि तुम में से कौन है जो मक्का पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु को मार दे। ये सुनकर उसके सारे जनरल्स चुप करके बैठे हुए क्योंकि वो दोबारा काबा के साथ वो नहीं करना चाहते थे जो यजीद ने किया था। तो अब्दुल मलिक ने दोबारा पूछा कि कोई है जो हमारी बादशाहत के लिए मक्का पर हमला करे, लेकिन फिर भी पूरे हॉल में खामोशी थी। आखिर अब्दुल मलिक के एक जवान जनरल ने अपना हाथ उठाया, बादशाह सलामत
मैं मक्का पर हमला करूंगा
क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैंने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़कर उसकी खाल उतार दी है। अब्दुल मलिक के इस बेशरम जनरल का नाम हम सब ने बचपन से सुना है और इस जनरल का नाम था हुज्जाज बिन यूसुफ। अब्दुल मलिक हुज्जाज की ये बातें सुनकर बहुत खुश हुआ और हुज्जाज बनु उमैया की फौज लेकर फुल स्पीड मक्का की तरफ बढ़ने लगा और मक्का को हर तरफ से घेर लिया। एंड अगेन हुज्जाज भी अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से तलवारों के साथ जंग नहीं कर सका, तो हुज्जाज ने भी मक्का के पहाड़ों पर अपने तोपों को खड़ा किया और मस्जिद अल हराम पर बमबारी शुरू की। हुज्जाज ने मक्का की मस्जिद पर इतने पत्थर बरसाए कि एक पत्थर सीधा जाकर काबा को लगा। कहा जाता है जैसे ही यह पत्थर काबा को लगा आसमान में बिजली खड़कने लगी। ये देखकर हुज्जाज की फौज में खौफ फैल गया और फौजियों ने अल्लाह के अजाब से डरकर अपने तोपों को रोक दिए और जंग से पीछे हटने लगे। ये देखकर हुज्जाज खुद आगे बढ़ा और अपने हाथों से पत्थर उठाकर तोप में रखा और दोबारा काबा पर बमबारी करने लगा और अपनी फौज से कहा कि डरो मत, इन बिजलियों का मतलब है कि अल्लाह हमारे साथ है। ये देखकर उसकी फौज भी आगे बढ़ और दोबारा काबा पर पांचों तोपों से हमला करने लगे। अब काबा पर एक ही वक्त में बहुत सारे गोले बरस रहे थे जिसे देखकर लोग अपने आप को बचाने के लिए काबा से दूर भागने लगे, लेकिन इस सारी बमबारी में सिर्फ एक शख्स काबा के पास इन गोलों की बारिश में नमाज पढ़ रहा था, खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु। आहिस्ता आहिस्ता हुज्जाज की फौज मक्का के सेंटर काबा की तरफ बढ़ने लगे और हालात इतने खराब हुए कि सबको समझ आ गई कि अब खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर हुज्जाज के हाथों से नहीं बच सकते, जिसे देखकर बहुत सारे लोग खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर को छोड़कर बादशाह अब्दुल मलिक की साइड पर जाने लगे और अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने कुछ ही साथियों के साथ खिलाफत को बचाने के लिए खड़े रहे, जिसके बाद अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु आखिरी बार अपनी माँ आसमा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलने गए जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी और अपनी माँ से सलाम के बाद कहा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, जिस पर उनकी माँ ने उन्हें बहुत दुआएं दी। और इसी के साथ खलीफा अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी तलवार लेकर हुज्जाज से आखिरी लड़ाई के लिए अपने घर से निकले, लेकिन ऑफकोर्स कुछ ही देर में हुज्जाज की फौजों ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। लेकिन खलीफा को मारने के बाद भी हुज्जाज का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, उसने अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर काट के उसे बनु उमैया के बादशाह अब्दुल मलिक की तरफ एक गिफ्ट के तौर पर रवाना किया और अब्दुल्ला बिन जुबैर के जिस्म को मक्का के एक खंबे पर उल्टा लटका दिया ताकि सारे मुसलमान ये बात अच्छी तरह जान लें कि बनु उमैया के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होगा। जिसके बाद हुज्जाज ने हुक्म दिया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर की माँ अस्मा बिनते अबू बकर को बालों से घसीटकर मेरे पास लाया जाए, लेकिन जब वो नहीं आई हुज्जाज खुद उनके पास गया और उनसे कहा कि देखा आपने कि मैंने आपके गुमराह बेटे को कैसे कत्ल किया, تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں تم نے میرے بیٹے کی دنیا تباہ کر دی اور اس نے تمہاری آخرت۔ اس طرح جو خلافت پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ آج انہی کے نواسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ختم ہو گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ بادشاہ عبد الملک کعبہ پر بمباری کرنے کی وجہ سے حجاج کو کوئی تو سزا دیتا، لیکن نہیں، کعبہ پر بمباری کے بعد عبد الملک نے حجاج کو سزا دینے کے بجائے اسے پورے عراق اور ایران کا گورنر بنا دیا۔ جانے سے پہلے حجاج نے کعبہ کو گرا کر اسے دوبارہ پرانے اسٹائل میں بنایا اور آج تک کعبہ اسی طرح کھڑا ہے۔ مطلب بنو امیہ نے صرف 10 سال کے اندر اندر کعبہ پر 2 بڑے حملے کیے تھے، لیکن اگلے 300 سال تک کسی نے بھی کعبہ پر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ آخر آلموسٹ 300 سال کے بعد کعبہ پر 4th بڑا حملہ ہوا، کہ جب عرب میں ایک نیا ایکسٹریمسٹ فرقہ بنا اور انہوں نے اپنے کیپٹل بحرین سے اعلان کیا کہ دنیا میں ہمارا مہدی آ چکا اور جو بھی ہمارے اس مہدی کو مہدی نہیں مانے گا اسے ہم مسلمان سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن آف کورس اس وقت کی مسلمان سپر پاور عباسی خلافت نے ان کے مہدی کو نہیں مانا تو انہوں نے غصے میں آ کر مکہ پر حج کے دنوں میں حملہ کر دیا اور ہزاروں حاجیوں کو مار کر انہیں زمزم کے کنویں میں پھینک دیا۔ لیکن یہاں بھی وہ رکے نہیں، بلکہ انہوں نے کعبہ کے اندر گھس کر اسے لوٹنا شروع کیا۔ انہوں نے کعبہ کا دروازہ اور ایون حجر اسود کو بھی چوری کر لیا اور اسے لے کر واپس اپنے کیپٹل بحرین لے گئے۔ اور یہ اتنی عجیب بات تھی کہ اگلے 22 ایئرز تک حجر اسود کعبہ میں نہیں بلکہ انہی لوگوں کے پاس تھا، اور 22 سال تک لوگ بغیر حجر اسود کے کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ لیکن بالکل بنو امیہ کی طرح عباسی خلافت کو بھی کعبہ کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور وہ حجر اسود کو چھوڑ کر اپنی عیاشیوں میں گم تھے۔ لیکن آخر 22 سال کے بعد ان لوگوں سے ڈیل کر کے حجر اسود کو دوبارہ کعبہ میں لگایا گیا جہاں وہ آج تک پڑا ہے۔ اب یہ تو تھی 1000 سال پرانی بات ہے، لیکن کعبہ پر آخری حملہ آج سے صرف 50 سال پہلے ہوا، جب سعودی عرب میں ایک نیا بادشاہ بنا شاہ فیصل۔
ولو اجمع العرب جميعا۔
لیکن بادشاہ بنتے ہی شاہ فیصل نے کچھ ایسے کام کرنا شروع کیے جس سے سعودی علماء ان کے خلاف ہونے لگے۔ شاہ فیصل نے سعودی میں لڑکیوں کے سکول بنائے، یونیورسٹیز بنائے اور ایون سعودی کا پہلا ٹی وی چینل بنایا۔ لیکن سعودی علماء اس زمانے میں ان ساری چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، تو سعودی علماء آہستہ آہستہ لوگوں کو شاہ فیصل کے خلاف بھڑکانے لگے اور ہر جگہ فیصل کے خلاف پروٹیسٹ ہونے لگے۔ لیکن فیصل تھا، اس نے ان کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ لیکن پھر بھی یہ علماء فیصل کے خلاف کبھی بھی بغاوت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے کچھ ینگ اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں سعود خاندان کے خلاف بغاوت کرنے کی آگ بھڑکنے لگی تھی۔ اور بادشاہ فیصل کے شہید ہوتے انہی کے ایک ینگ اسٹوڈنٹ جہیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ سعود خاندان کے خلاف بغاوت کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اسے بس اب ایک موقع کا انتظار تھا اور آخر اسے یہ موقع مل گیا۔ 1979 مسلمانوں کی ہسٹری کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سال تھا، کیونکہ اسی سال پاکستان میں اس کے سب سے بڑے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ پاکستان کے ساتھ ہی افغانستان پر سپر پاور روس نے حملہ کیا۔ افغانستان کے پاس ایران میں 40 سال کی حکومت ختم کرنے کے بعد ایک نیا لیڈر بنا آیت اللہ خمینی، اور اسی کے پاس عراق میں بھی عرب کا ایک بہت بڑا لیڈر آیا صدام حسین۔ اب جب دنیا میں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو ان سعودی اسٹوڈنٹس نے بھی سوچا کہ یہی وقت سعودی حکومت کو گرانے کا، جس کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک پلان بنایا۔ اچانک ایک بالکل نارمل عام سے دن جب مکہ کی گرینڈ مسجد میں امام فجر کی نماز پڑھا رہا تھا، جہیمان آگے بڑھا اور کعبہ کے امام سے مائک چھین کر اعلان کیا، اے دنیا کے مسلمانوں، ہم سب کو جس کا بے صبری سے انتظار تھا وہ مہدی آ چکا ہے اور وہ آج یہی پر ہم سب کے ساتھ کھڑا ہے، جس کا نام ہے محمد بن عبداللہ۔ اب یہ اتنا پرفیکٹ پلان تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ مہدی کا نام بالکل میرے نام جیسا ہوگا، مطلب محمد، और मेहदी के बाप का नाम भी मेरे बाप के नाम जैसा होगा, मतलब अब्दुल्ला। और अब मक्का में खड़े इस मेहदी का नाम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था। जैसे ही जुहैमान ने ऐलान किया, उसके 500 साथियों ने अपने गन्स निकाल लिए और मस्जिद को हर तरफ से घेर लिया। और इनके कुछ साथी स्नाइपर्स लेकर मस्जिद के मीनारों पर खड़े हुए। इन गन्स को वो इस सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की गाड़ी और ताबूतों में मस्जिद के अंदर लाए थे, और इन गन्स को यूज करके ये लोग काबा के गार्ड्स को मारने लगे, जिससे ऑफ कोर्स वहां पर खड़े आम मुसलमान चीखने लगे। लेकिन इस फेक मेहदी के ऑर्डर्स पर उसके फॉलोअर्स इन आम मुसलमानों पर गोलियां चलाने लगे, और इस तरह उन्होंने कुछ ही देर में हजारों मुसलमानों को मस्जिद के अंदर ही कैदी बना लिया। जब सऊदी हुकूमत को इस सब का पता चला, पहले तो वो मस्जिद हराम पर हमला करने से डर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सऊदी के सबसे बड़े आलिम शेख बिन बास से इजाजत मांगी, जिस पर शेख बिन बास ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा कि ये कोई मेहदी नहीं बल्कि सिर्फ एक झूठा टेररिस्ट है। जिसके बाद सऊदी फौज ने मस्जिद में इस फेक मेहदी पर हमला कर दिया। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इस फेक मेहदी के फॉलोअर्स को 100% यकीन था कि यही असल मेहदी है, और वो इस फेक मेहदी के लिए इतनी बहादुरी से लड़े कि आसानी से उन्होंने सऊदी फौज को पीछे धकेल दिया। अब जब जुहैमान ने देखा कि वो तो सऊदी फौज से ये जंग जीत रहा है, तो वो आगे आया और दुनिया के सामने अपने डिमांड्स रखे, वेस्ट के साथ सारे ताल्लुकात तोड़ दिए जाए, अमेरिका को सारी तेल बेचना बंद कर दी जाए, और सऊदी अरब का बादशाह हमारे इस मेहदी के सामने सरेंडर करे। अब जब जुहैमान ने सीधा सुपर पावर अमेरिका को धमकियां दी, अमेरिका ने गुस्से में आकर यहां पर एक बहुत बड़ी गलती
की।
अमेरिका ने ऐलान किया कि ये सारा हमला सिर्फ जुहैमान नहीं कर रहा बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश के पीछे एक ही आदमी, ईरान का आयतुल्लाह खुमेनी। और ये ऑफकोर्स सब कुछ बिल्कुल झूठ था। अमेरिका बस सऊदी और ईरान को आपस में लड़ाना चाहता था, जो आज तक वो करता रहता। लेकिन खुमेनी भी अमेरिका से डरने वाला नहीं था। अमेरिका के ऐलान के बाद खुमेनी ने भी एक ऐलान किया कि काबा पर ये हमला हमने नहीं बल्कि अमेरिका के CIA ने किया है। अमेरिका के ऐलान के बाद तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन खुमेनी इतना बड़ा लीडर था कि उनके ऐलान के साथ ही पूरे दुनिया के मुसलमान अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और हर तरफ प्रोटेस्ट करने लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान और लीबिया में अमेरिका की एम्बेसीज को आग लगा दी गई। अब जब पूरी दुनिया में इस वाक्य की वजह से इतना बड़ा मसला बन रहा था, सऊदी हुकूमत ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए इस फेक मेहदी और उसके साथियों पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला कर दी। और इस हमले में सऊदी अरब की मदद फ्रांस और पाकिस्तान ने की। अब पाकिस्तान में ये मशहूर है कि इस हमले को रोकने में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान का था, और पाकिस्तान की आर्मी में स्पेशली मेजर मुशर्रफ का रोल।
पाकिस्तान हैज टेकन।
लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, पाकिस्तान का इस हमले को रोकने में एक बहुत ही छोटा रोल था। एनीवेज, जैसे ही सऊदी ने अपना दूसरा हमला शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ये फेक मेहदी और उसके साथ पीछे हटने लगे, और सऊदी आर्मी ने मस्जिद की दीवारों में सुराख करके इन टेररिस्ट की तरफ ग्रेनेड्स फेंके, जिससे इतने ज्यादा लोग मरने लगे कि इन बागियों का मोराल बिल्कुल टूटने लगा। जिसे देखकर आखिर ये फेक मेहदी खुद आगे बढ़ा और अपने हाथों से इन ग्रेनेड्स को उठाकर वापस सऊदी फौज पर फेंकने लगा, जिसे देखकर उसके फॉलोअर्स का यकीन और भी बढ़ गया कि यही असल मेहदी है। लेकिन जैसे ही इस मेहदी ने अगला ग्रेनेड उठाया और उसे फेंकने के लिए अपना हाथ पीछे किया, वो ग्रेनेड इसके हाथ में फट गया, और अपने आप को मेहदी कहने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मर गया। इस फेक मेहदी के मरते ही उसके साथियों के सारे ख्वाब टूट गए, और उन्हें समझ आ गई कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। लेकिन अब सरेंडर करने का ऑप्शन इनके पास नहीं था, तो वो लड़ते लड़ते आखिर मस्जिद के बेसमेंट पर पहुंचे और वहां दोबारा आखिरी दम तक लड़ने लगे। लेकिन फ्रांस की आर्मी के टेयर गैसेस की वजह से इन सारे बागियों को बेहोश करके पकड़ लिया गया, और इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड जुहैमान भी पकड़ा गया। कहा जाता है इसके बाद वो सऊदी आर्मी के सामने भीख मांगने लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मेरा वाकई में ख्याल था कि यही आदमी मेहदी है। लेकिन सऊदी इंटेलिजेंस के चीफ और बादशाह फैसल के बेटे ने उसे कहा कि अब बहुत देर हो चुकी। जिसके बाद इन सारे बागियों के पूरी दुनिया के सामने सर काट दिए। इस तरह हिस्ट्री में काबा पर 5 बड़े हमले हुए थे, जिसमें सिर्फ 1 अब्रहा के अलावा बाकी सारे मुसलमानों ने खुद किए थे।
सब्सक्राइब।